సిద్ధీభ్యః ఓం నమః సిద్ధీభ్యః యః జ్ఞానశక్తి కోటి సూర్యరణు మీరిదే మత్తు యార దివ్య ధ్వనియు లోకహితవ మాడిదే ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಕೀರ್ತಿ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಅಂಥ ದೇವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಲೆಯು ಬಾಗಿದೆ ಪಂಚ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಜ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ದೋ ಧರ್ಮ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುವರ್ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಜೋ ಧಾರಣ ಕಿಯಾ ಜಾಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಗಟ ಕಿಯಾ ಜಾಯ ವಹ ಧರ್ಮ ಕಹಲಾತಾ ಹೈ ಐಸಾ ವಹ ಧರ್ಮ ದಸ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಹೋತಾ ಹೈ ಉತ್ತಮ ಕ್ಷಮಾ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ದವ ಉತ್ತಮ ಆರ್ಜವ ಉತ್ತಮ ಶೌಚ फिर इन धर्मों के आने के बाद ही मनुष्य में एक सत्यता प्रकट होती है। इसलिए उत्तम सत्य चार धर्मों के उपरांत उत्पन्न हुआ। उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग और उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। जो धारण किया जाए उसे धर्म कहते हैं। धारण करने के लिए कितने हो गए? दस हो गए। दस ही बस, बीस होते तो बहुत कठिन होता। दस ही बस, बहुत होते तो बहुत कठिन होता। कितने कितने धारण करे, क्या क्या धारण करे। धारण तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन दस में सब कुछ आ जाता है। इसलिए धर्म के ये दस ही भेद हैं। यह आप लोगों को पता है, पंच परमेष्ठि होते हैं और उसमें आचार्य परमेष्ठि जो रहते हैं उनके 36 मूल गुण हैं और 36 मूल गुणों के बीच ये दस धर्म भी आते हैं। वो 36 कौन कौन से हैं पता है ना? 12 प्रकार के तप हैं आचार्य परमेष्ठि के और 10 धर्म हैं। ये कौन से गुण हैं? मूल गुण आचार्य परमेष्ठि के, ये मूल गुण हैं। 12 प्रकार के तपों को तपते हैं आचार्य परमेष्ठि और 10 प्रकार के धर्मों का धारण करते हैं, पंचाचार का पालन करते हैं, षड आवश्यकों का पालन करते हैं और 3 गुप्तियों को सुरक्षित रखते हैं अपने जीवन में। ये भी धारण किए जाने वाले गुण ही हैं जो 36 संख्या के रूप में हैं। 36 आचार्य परमेष्ठि के मूल गुण 36 और 36 को जो धारण करते हैं वो संसार के कारणों से सदा डरते हैं, धर्म से नहीं डरते, संसार के कारणों से वे सदा डरते हैं। और जो डरते हैं वो 36 बन जाते। 36 अकड़ा है। संसार से डरने का मतलब क्या? उनसे हमसे नहीं बनता, ये 36 अकड़ा। और 36 को आप लोग ऐसे लिखते हैं, 3 को लेफ्ट साइड मुख करके लिख देते हैं और 6 को राइट साइड। ये दोनों जमते नहीं, ये छः हैं, यह इस तरफ का छः है और इस तरफ का तीन है। तीन रत्नत्रय का सूचक है और छः द्रव्यों का सूचक है। ये रत्नत्रय तभी प्रकट होते हैं जब छः से छत्तीस ही बन जाए। जब हम महाव्रती बनते हैं, संयम धारण करते हैं, उस वक्त हम इस संसार में रहने वाले समस्त द्रव्यों से क्या धारण करते हैं? समता। समता धारण करते हैं, यानी छह द्रव्यों में हम राग द्वेष आदि परिणाम नहीं करेंगे। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। आचार्य परमेष्टि छह द्रव्यों में राग द्वेष मुक्त रहते हैं और छह द्रव्य में से एक भी द्रव्य का परिग्रह उनके पास नहीं रहता, इसलिए तीन प्रकट हुआ है। जब तीन प्रकट हो गया तो वह तीन कहता है, तुम्हारे तरफ हमारा मुख तक नहीं रहेगा, हम पीठ बना करके बैठेंगे। हम पीठ करके बैठेंगे, और जब ये पीठ करके बैठ जाता है तो वो छह द्रव्य भी कहते हैं, तुम पीठ करोगे तो हम भी पीठ करते हैं, हम इधर चले जाते हैं तुम उधर चले जाओ। इस प्रकार से ये 36 जो मूल गुण है ना, ये मूल गुण 36 कैसे प्रकट हो गए? 10 धर्म प्रकट होने के कारण से बाकी शेष मूल गुण प्रकट हो गए। 10 मूल गुण अगर प्रकट नहीं होते तो वो भी नहीं होते। मूल गुणों को धारण किए बिना क्या 12 प्रकार के तप कर सकते हैं, हो सकते हैं? मूल गुणों को धारण किए बिना तपस्या क्या कर्म निर्जरा का कारण हो सकती है? नहीं हो सकती। तपस्या मूल कर्म निर्जरा का कारण क्यों नहीं हुई? क्योंकि मूल गुण नहीं आए। मुख्य मूल गुण कौन है? 36 में जिसको हमें रीढ़ कहना चाहिए, बैकबोन, शरीर में जैसा रीढ़ की हड्डी होती है, उस कारण से ही सारा शरीर संचालित होता है। हर कार्य में उन्हीं उसी रीढ़ हड्डी का ही केवल सहयोग मिलता है। हम 12 प्रकार की तपस्या करें, 6 प्रकार के षड आवश्यकों का पालन करें, पंचाचार का पालन करें, तीन गुप्ती का धारण करें, इन सभी को धारण करने के बाद यदि हम 10 को माइनस करेंगे तो क्या कितने बचेंगे, बोलो? हाँ, 0 बचेंगे क्या? जो बचते हैं वो बचेंगे? हाँ, 0 बचेंगे। यानी कि आचार्य परमेष्टि के जीवन में 10 मूल गुण, 10 धर्म ये अत्यंत परम आवश्यक है, क्योंकि वो एक जवाबदार व्यक्तित्व वाले परमेष्टि हैं। वे खुद संभलते हैं और दूसरे को भी संभालते हैं। खुद संभल जाना आसान बात है, परंतु खुद को संभालते संभालते दूसरे को भी संभाल लेना ये बहुत बड़ा कठिन होता है। खुद को संभालने वाले ज्यादा होते, दूसरे को संभालने वाले बहुत कम होते, बहुत कम होते। खुद को संभालने वाले बहुत सारे मोक्ष चले गए हैं, पर को संभालने वाले जो मोक्ष गए हैं वो बहुत कम संख्या में हैं। साधु परमेष्टि भी हैं, उपाध्याय परमेष्टि भी हैं, इनके पास स्वयं के अपने मूल गुण अलग अलग हैं। 25 मूल गुण उपाध्याय परमिष्टि के हैं और 28 मूल गुण साधु परमिष्टि के, और 10 प्रकार के परिग्रहों को छोड़ने के बाद ये दश धर्म तो आते ही हैं साधु के जीवन में। तो साधु परमिष्टि के जीवन में क्या दश धर्म नहीं होते? होते हैं, किंतु यहां पर उनको मूल गुण क्यों नहीं कहा? सोचने लायक। उपाध्याय परमिष्टि के जीवन में क्या दश धर्म नहीं होते? उन्होंने भी तो 10 परिग्रह 24 परिग्रह त्यागा है बाह्याभ्यंतर, तो उनके जीवन क्या जीवन में क्या दश धर्म नहीं होते? होते हैं, लेकिन मूल गुण में ग्रहण क्यों नहीं किया? आचार्य परमिष्टि के जीवन में तो प्रमुख रूप से रखा, इन गुणों के बिना आचार्य परमिष्टि नहीं हो सकते, ये कहा। तो क्या उपाध्याय के जीवन में ये नहीं है? वो देते हैं साधु को, देते हैं लोग, उनके पास रहने से आ जाते हैं, मतलब दीक्षा लेते समय नहीं आते, बाद में उनके पास जब बैठ जाते हैं तो ट्रांसफरिंग होता है। आचार्य परमेष्टि हमारे लिए 28 मूल गुणों का उपदेश देते हैं दीक्षा के काल में, किंतु 28 मूल गुणों को धारण करना हम स्वयं करते हैं, आचार्य परमेष्टि केवल उस समय उपदेशक होते, स्वरूप समझाते हैं। ये अहिंसा महाव्रत का, ये सत्य महाव्रत का, अचौर्य महाव्रत का इस प्रकार से स्वरूप है, आपको पालन करना है, इस प्रकार स्वरूप समझाते हैं। समझाने के उपरांत जैसे जैसे समझाते हैं वैसे वैसे उनके स्वरूप के अनुसार ही हम व्रतों का ग्रहण करते हैं। अपरिग्रह महाव्रत को ग्रहण करते समय क्या छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना, कितना छोड़ना सब बता देते हैं, तो वहां पर 24 को छोड़ देते हैं, 24 परिग्रह, बहिरंग 10 और अंतरंग 14, 24 परिग्रह छोड़ देते हैं। साधु परमिष्टि आचार्य परमिष्टि के उपदेश से छोड़ते, दीक्षा वो नहीं देते। दीक्षा क्या होती है इसका ज्ञान कराते हैं, दीक्षा क्या होती है इसका ज्ञान कराते हैं। ज्ञान प्राप्त हमें उनका होने के उपरांत उस पर हम श्रद्धान बिठा देते, उपदेश पर श्रद्धा आती, और उस श्रद्धा पूर्वक उनको गुरु मानते हुए आपके उपदेश से जो कुछ भी हमारे लिए ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान को आचरण के रूप में हम बदलते हैं, ये कह करके 10 का भी हम त्याग करेंगे और 14 का भी हम त्याग करेंगे, ऐसा कहकर दीक्षित तो हम स्वयं होते हैं। जब हम दीक्षित स्वयं होने लगते हैं तो संकल्प भी उस समय हम स्वयं ही लेते हैं, हे आचार्य परमिष्टि हम 10 प्रकार के परिग्रहों को जीवन पर्यंत त्याग करेंगे, केवल 10 का ही त्याग नहीं करेंगे परंतु इन परिग्रहों के रहने से जो रागादि भाव हो सकते हैं उन रागादि भावों को भी हम विसर्जित इसके साथ ही करेंगे। कौन कौन से रागादि भाव होते हैं? अनंतानुबंधी संबंधी रागादि भाव, अप्रत्याख्यानावरणी संबंधी रागादि भाव और प्रत्याख्यानावरण संबंधी रागादि भाव जो ये होते हैं, इन तीनों संबंधी रागादि भाव को हम विसर्जित करते हैं, इनको जीवन पर्यंत स्वीकार नहीं करेंगे, परभव में इनके प्रति कामना भी नहीं रखेंगे और वर्तमान में जो हैं इनकी अपेक्षा भी हम कभी भी बीच में नहीं करेंगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत 10 प्रकार के परिग्रहों को उनकी आशा को भी साथ साथ में त्याग करते हुए दीक्षा लेते हैं। इसको कहते हैं दीक्षा। त्याग करने वाला दीक्षित होता है, त्याग करने वाला दीक्षित होता है। आचार्य परमेष्टि दीक्षित नहीं करते, दीक्षित तुम्हें होना है, संकल्प तुम्हें लेना है, और संकल्प का नाम ही दीक्षा है। संकल्प लेते समय कैसा क्या संकल्प लेते हैं, 14 और ये 10, 24 का जीवन पर्यंत त्याग रहेगा। तो अंतरंग में क्या क्या त्याग दिया आपने, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणी, इन कषायों के उदय से जो पर पदार्थों के प्रति रागादि भाव होता है, वो रागादि भाव हम कभी नहीं करेंगे। और ये रागादि भाव भी 3 प्रकार के तभी होते हैं जब पर पदार्थ को हम रखेंगे, उनका स्वामित्व रहेगा, उनके प्रति मूर्छा भाव उत्पन्न होगा, तब इन 3 में से कोई रागादि भाव रहेगा। अब देखो, यहां मैं उस बात को कह रहा था, साधु परमेष्टि के जीवन में 24 प्रकार के परिग्रह को त्यागने पर उत्तम क्षमादि दशधर्म प्रकट हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। इसलिए हुए हैं क्योंकि उन परिग्रहों को लेकर के क्रोध नहीं आएगा, इसलिए उत्तम क्षमा है। प्रत्याख्यानावरणी क्रोध नहीं आएगा, प्रत्याख्यानावरणी मान नहीं आएगा, प्रत्याख्यानावरणी मायाचारी नहीं होगी, प्रत्याख्यानावरणी लोभ नहीं होगा। इसी प्रकार अगर ये प्रत्याख्यानावरणी लोभ आदि क्रोध आदि हो जाए तो एक देश परिग्रह के प्रति होगा, क्योंकि प्रत्याख्यानावरणी सबको ग्रहण करो यह आपको प्रेरणा नहीं करता। अप्रत्याख्यानावरणी कषाय तुम सभी ग्रहण करो ये भाव जगाता है, किंतु प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय में जीव कुछ रखना चाहता है और बाकी का त्याग करना चाहता है, इस प्रकार के परिणाम सतत उसके रहते हैं। किंतु संज्वलन के उदय में सोचो कैसे परिणाम होते हैं। मुझे इन 10 में से कुछ भी नहीं चाहिए, ये जो बहिरंग 10 परिग्रह है ना, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसे सतत परिणाम रहते हैं। और अनंतानुबंधी के उदय में इन परिग्रहों के प्रति संतोष भाव भी नहीं रहता। हाय 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 हाय, धन 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 धन, लक्ष्मी लक्ष्मी लक्ष्मी, जितना संग्रह हो जाए उसमें संतुष्टि नहीं है। परिग्रह बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं है। कुछ दिन पहले लखपति बनने के भाव थे, लखपति बन गए तो अब करोड़पति बनने के भाव हो गए, करोड़पति बनने के भाव पूर्ण हो गए, अब अरबपति बनने के भाव हो गए, और फिर अरबपति बनने के भाव हो गए तो फिर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बैठे बैठे अरबपति हो जाए, अब अरब देश भी जाना पड़ेगा व्यवसाय उद्योग के लिए। ये परिणाम, आशा के परिणाम, कैसी आशा है ये अनंत आशा है, अनंत लोग है, और इस कषाय को इसी कारण से अनंत संसार के कारणीभूत कषाय कहा। जिस कषाय के उदय होने पर हमारे लिए तृप्ति नहीं रहती, उस कषाय का नाम ही अनंतानुबंधी। देखो, आप लोग अपनी अपनी आत्मा में रहने वाली इन कषायों को पहचानना चाहते हैं तो पहचान सकते हो क्या? नहीं पहचान सकते। आप कमा रहे हैं, कितना कमाया? कुछ तो कमाया, लेकिन संतोष वृत्ति आई है क्या नहीं, इस क्वेश्चन का उत्तर ढूंढो अंतरंग में, आई है क्या नहीं। यदि आई है तो अनंत अनुबंधी नहीं है, और यदि नहीं आई है तो निश्चित रूप से अनंत अनुबंधी का उदय भी वहां विद्यमान है। वैराग्य उसको कहते हैं, वैराग्य उसको कहते हैं जब हमारे लिए ये जो विद्यमान परिग्रह हैं उसमें से कुछ त्यागना है। संतोष धारण करना ये वैराग्य नहीं, संतोष धारण करने के उपरांत जो विद्यमान परिग्रह है ये विद्यमान परिग्रहों को कम करने का जो भाव होता है इसको हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य में तो दीक्षा होती है, संतोष भाव प्राप्त करने में दीक्षा नहीं होती। एक सीमा, एक मर्यादा, एक रेखा अपने जीवन में हम खींच लेते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। नहीं, परिग्रह प्रमाण नहीं कहलाता। हमारे पास जो अपने पुण्य के उदय से कमाया जा रहा है, कमा रहे हैं, इसमें हम संतुष्ट रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे, संतोष वृत्ति के जीवन को जिएंगे। ऐसे परिणाम, यानी कैसे परिणाम, ऐसे परिणाम संतोष भावना को धारण करेंगे इस पुद्गल परिग्रह के प्रति, हाय हाय त्राय त्राय नहीं करेंगे। तो फिर त्याग क्या करोगे, त्याग कुछ भी नहीं करेंगे, परंतु आया हुआ है तो उसके प्रति संतोष धारण करेंगे। इतना ही क्यों आया, ऐसा नहीं करेंगे, आकुल व्याकुल परिणामों को धारण नहीं करेंगे। इतना ही क्यों आया, ऐसा विचार नहीं, जो पुण्य के उदय में आया है उसको ले लो, संतोष वृत्ति से जीवन जीव। ये अनंत अनुबंधी त्याग का प्रतीक है। फिर इसमें क्या होता है, व्यक्ति अपने पुण्य के उदय से यदि कमाना शुरू करेगा तो अधिक चोरी जारी, अधिक आकुलता, अधिक संग्रह के रास्ते पर नहीं जाएगा। जो स्वाभाविक रूप से अपने पुण्य के परिणाम स्वरूप आ रहा है, अपने क्षयोपशम लब्धि के वश से जो कुछ भी आ रहा है, क्षयोपशम लब्धि का मतलब अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से धन आता है। देखो धन कैसा आता है, किस पुण्य के उदय से, किस पुण्य के उदय से, लाभांतराय कर्म का पुण्य है क्या, क्षयोपशम है। लाभांतराय कर्म, कर्म ये पुण्य कर्म है क्या पाप कर्म है, लाभांतराय कर्म पाप प्रकृति है कि पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति है। ज्ञानांतराय, हाँ क्या क्या, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, पांच प्रकार का अंतराय कर्म है ये। हम लोगों को धन संपत्ति जो आती है ये कौन देता है, ईश्वर, ये देवी देवता, कौन देता है, आपका कर्म दे रहा है। कौन सा कर्म, लाभांतराय कर्म, वो पाप कर्म है और कैसे दे रहा है, प्रश्न उठता है। पाप कर्म है तो पाप कर्म संपत्ति कैसे देगा, संपत्ति का लाभ जो होता है ना पाप कर्म के उदय में तो हो नहीं सकता, लेकिन पाप कर्म का उपशमन होने पर होता है, क्षयोपशम होने पर संपत्ति की प्राप्ति होती है। लाभांतराय कर्म के क्षोभशम से धन आया और साता वेदनी कर्म के उदय से जब उसको हमने प्रयोग में लाया तो सुख और शांति का अनुभव किया, ये साता वेदनी। और उसको प्रयोग में लाते समय सुख के कारणीभूत वह वस्तु यदि हमारे लिए दुख का कारण बन जाए तो असाता वेदनी कर्म फल दे रहा है। प्रातः काल में आपको दूध पीने की इच्छा हो गई और घर वालों ने एक ग्लास दूध उसमें शक्कर घोलकर आपके सामने रखा, इच्छा तो बहुत है अंदर दूध पीने की, ग्लास लेकर के जब आप पीने लगे दूध कड़वी लगने लगी, शक्कर डली दूध डला हुआ दूध कड़वा क्यों लग रहा है? असाता का उदय। कर्म द्रव्य क्षेत्र काल भव को निमित्त बना करके फल देते हैं। कर्म हमारे लिए जो फल देते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव को निमित्त बना करके फल देते हैं। यहाँ द्रव्य शरीर एक द्रव्य है और इसमें हमारे लिए क्या हो गया है, कुछ डिस्टर्ब हो गया है शरीर में, बुखार आया है। जब बुखार आता है तो आप दूध पी सकते हैं क्या? मीठा दूध भी कैसा लगता है? कड़वा लगता है। मीठा दूध भी कड़वा लगता है। कड़वा क्यों लग रहा है? शरीर द्रव्य के निमित्त से असाता वेदनी कर्म हमारे लिए फल दे रहा है। दूध हमारे लिए अब दुख का कारण बन गया, कड़वा लग रहा है। सुख कहां दिला रहा है? दुख दिला रहा है। और यदि शरीर स्वस्थ हो जाए तो दूध मीठा लगने लग जाएगा। ये कौन सा कर्म का उदय? ये साता कर्म का उदय। साता कर्म के उदय में अच्छी तरह से भूख लगती है, खा सकते हैं। असाता वेदनी कर्म के उदय से तो भूख लगती है। भूख की वेदना किस कर्म के उदय से? असाता। और भूख जो खुल करके लग रही है और हम स्वस्थ हैं और दूध को पीते समय दूध अच्छा लग रहा है, ये साता का उदय है, ये साता का उदय। ऐसे साता के उदय में हम सुख का अनुभव करते हैं, लेकिन वस्तु का प्रयोग होते समय परिणाम अशुभ रह सकते हैं। क्यों अशुभ रह सकते हैं? अशुभ की ओर भाव है इसलिए परिणाम अशुभ होंगे। अशुभ है पर वस्तु सभी हमारे लिए ग्राह्य नहीं है, ये अशुभ हैं। कमाते समय अशुभ भाव, खाते भोगते समय अशुभ भाव, लेकिन त्यागते समय शुभ भाव। एक ग्लास दूध है और दशलक्षण पर्व चल रहा है, एकासन का नियम भी है, लेकिन दूध पिए बिना भी नहीं चलता, पीने की भी इच्छा है, एक बार ही भोजन करना है, लेकिन उसमें भी एकासन के साथ साथ हमें ऊनोदर भी करना है। ऊनोदर कुछ कम खाना है तो एक ग्लास में से आधा ग्लास ही आज हम दूध सेवन करेंगे, ये नियम हो सकता है, ये ऊनोदर कहलाया। ऊनोदर त्याग भाव है। उनोदर त्याग भाव, कितना त्याग किया? आधा ग्लास, ये शुभ भाव। और आधा ग्लास क्या कर रहे हैं? शेष पी रहे हैं, ये कौन सा भाव? ये अशुभ भाव। आधा ग्लास संबंधी बंद तो होगा ही, आधा ग्लास का नहीं होगा, आधा ग्लास का होगा। तो जहां त्याग है वहां शुभ भाव है, और जहां ग्रहण भाव है वह अशुभ भाव है। अशुभ भाव जहां होता है वहां पाप का आश्रय, पाप का बंध होगा है? हाँ है? एक चम्मच पीना भी पाप है, इसलिए अरहंत भगवान उतना भी नहीं पीते। और जिसको पीना पड़ता है वो तब तक पीना पड़ता है जब तक कि हम अंतराय कर्म को और अंतराय कर्म को और अंतराय कर्म नहीं असाता वेदनी कर्म को और मोहनी कर्म को, इन दोनों को जब तक नहीं जीतते तब तक पीना ही पड़ता है। और अरहंत भगवान इसलिए इन कर्मों को जीत करके वो अरहंत बन गए। उनका लक्ष्य था हमको जरा भी पीना न पड़े, हमको प्यास भी नहीं लगे और भूख भी नहीं लगे, ऐसी अवस्था मुझे प्रकट हो तो पीना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसी अवस्था प्रकट करने के लिए कौन से कर्म को हम जीते? मोहनी कर्म को जीते। मोहनी कर्म के 28 प्रकृतियों को जीतना आवश्यक है, और उसके साथ जो असाता वेदनी कर्म है ना, वह असाता वेदनी कर्म तो यहां पर जीता नहीं जाएगा, और उसको नहीं भी जीतते हैं तो चलेगा, परंतु मोहनी कर्म को तो जीतना ही पड़ेगा। क्योंकि मोहनी कर्म के उदय होते ही खाने पीने की इच्छा ये भाव कर्म, इच्छा ये कौन सा कर्म? भाव कर्म। ये इच्छा मोहन द्रव्य मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न हुई है। कर्म के उदय के बिना इच्छा नहीं होती। जिनके पास 28 कर्म नहीं है, न अनंत अनुबंधी इच्छा है, न प्रत्याख्यानावरणी लोभ है, न प्रत्याख्यानावरणी लोभ है, न संजोरण लोभ है, ये लोभ कर्म के उदय से इच्छा होती है। पर वस्तुओं को ग्रहण करने की, प्यास मिटाने की, भूख मिटाने की इच्छा जो होती है, ये इच्छा किस कारण से? द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से और भाव कर्म के उत्पन्न होने पर। जब भूख लगती है तो खाने की इच्छा होती ही है। कई लोग इस इच्छा को दबा के रखते हैं, दिन में इच्छा को दबा के रखते हैं, और दबा के रखते हैं तो वो दबा हुआ ही होता है। इच्छा को नाश नहीं करते, इच्छा को हटा करके काम नहीं करते, दबाते हैं, दबाते हैं। तो दबाने से क्या होता है? रात को सो जाते हैं और वह हमारे सोने के उपरांत वो इच्छा जागृत होती है और खा जाती है, तो रात में भोजन हो जाता है। ऐसे स्वप्न कई बार आते हैं कि नहीं? दिन में तो उपवास किया था लेकिन रात में तो हमने भोजन कर लिया, ऐसे स्वप्न आए हैं कि नहीं आए? और ऐसे स्वप्न किस अवसर पर आते हैं? जब पेट में भूख हो और आप सोए हो तो खाने के स्वप्न, खाने पीने के स्वप्न आएंगे ही। क्यों? शरीर जैसा है वैसा ही आत्मा है अंदर, उस आत्मा को खाने पीने की इच्छा इस द्रव्य मोहनी कर्म के उदय में होगी ही होगी। अब स्वप्न में आपने भोजन कर लिया लेकिन वास्तव में खाया था क्या? नहीं खाया था। लेकिन खाने संबंधी कर्म का बंद हुआ है क्या? नहीं। ये तो तंदुल मत्स्य जैसा हो गया। खाने पीने की इच्छा होती ही कर्म का बंध होता ही है, और हो गया वहां पर कर्म का बंध। आप कहेंगे आज मार्दव धर्म है, उत्तम मार्दव, आज उपवास था, मैंने कहाँ खाया नहीं खाया है, मुझे कर्म बंध नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा मान करने से भी कर्म आपको बचाएगा नहीं। भाव कर्म से भी बंध होता है, किंतु केवल द्रव्य कर्म का उदय हो और भाव न हो तो कर्मों का बंध होता ही नहीं है। जैसे दिन में बंध नहीं हुआ, क्योंकि इच्छा को दबा के रखे थे हम, निरोध किए थे। इच्छा निरोध तप, इच्छा का निरोध करना तप है, और द्रव्य कर्मों का नाश करना हमारा लक्ष्य है, हमारा अंतिम लक्ष्य है द्रव्य कर्म नष्ट हो, क्योंकि इसी द्रव्य कर्म के उदय के कारण भाव कर्म उत्पन्न हो रहा है, इच्छा उत्पन्न हो रही है। तो हमें इच्छा को दबाने का सर्वप्रथम पुरुषार्थ करना चाहिए। द्रव्य कर्म को कोई भी जीत नहीं सकेगा, क्योंकि मुनि अवस्था में भी भूख प्यास है, छठे सप्तम गुणस्थान में भी मुनि अवस्था में भी भूख प्यास होती ही है। तो मुनि महाराज ये सोचे क्या कि हम इच्छा को नहीं जीतेंगे, द्रव्य कर्म को पहले हटाएंगे, भाव कर्म को पहला काबू में नहीं लेंगे, द्रव्य कर्म का नाश करेंगे, ऑटोमेटिक भाव कर्म चला जाएगा। ऐसा यदि करने के लिए कोई तैयार हो जाए तो ये तो असंभव है। द्रव्य कर्मों का नाश किस कर्म को जीतने से होगा? भाव कर्म को जीतने से द्रव्य कर्मों को जीतना होगा। समझ में आया ना, ये गणित है। और कोई कहे कि महाराज कर्म का उदय है, मैं क्या कर सकता हूँ, भूख लगती ही है, इच्छा होती ही है, खाना पड़ता ही है, ऐसा कह सकते? कर्म का उदय है मैं क्या करूं, ये कहना उचित नहीं है। कर्म का उदय है तो इच्छा हो सकती है, करने से इच्छा होगी, नहीं करने से इच्छा नहीं होगी। क्या करूं, ये तो कर्म का उदय है, कर्म का उदय होने से इच्छा होती है, इच्छा होती है तो खाना ही पड़ता है, तो खाते खाते ही जा रहे हैं, खाते खाते ही जा रहे हैं, और खाते खाते सोते सोते जीवन गया, तो फिर अपने तप क्या किया? हाँ, इन तपों का जो व्याख्यान आया है शास्त्रों में, किस उद्देश्य आया है? इच्छा को जीतने के लिए आया है। इच्छा को कैसे जीतो? तप करके इच्छा को जीतो। लेकिन यहाँ पर अपने को ये समझना है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच, ये जो चार धर्म हैं, ये कितने कषायों को जीतने से प्रकट हो गए? तीन चौकड़ी। जो तीन चौकड़ी को जीत लेता है वही सत्यवान माना जाता है। इसलिए चार धर्मों के बाद सत्य धर्म आया है। जिसके पास बिल्कुल परिग्रह नहीं 24 प्रकार का, वही व्यक्ति सत्यवान है, बाकी सब असत्य है। क्यों असत्य है? देख लो, जो अपना नहीं उसको अपना कहता है, झूठ है क्या? नहीं है। धन संपत्ति इत्यादि अपना है क्या? ये आपका क्या है? आपके आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही आपका है, आत्मा का शुद्ध स्वभाव ही आपका वैभव है। उसमें रत्नत्रय है, दश धर्म है, बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण हैं, वो अनंत गुण की संपत्ति ही आपकी संपत्ति है, तो बाह्य संपत्ति को अपनी संपत्ति क्यों कहते हो? असत्य बोल रहे हो क्या? नहीं, ये पर होते हुए भी अपनी संपत्ति बोल रहे हो क्या? नहीं बोल रहे हैं, यही असत्य है। ये हमारा वस्त्र, ये हमारा घर, जब यहां से घर जाएंगे ना, आप दूसरे घर में कभी नहीं जाएंगे, अपने ही घर में प्रवेश करेंगे। नहीं भी मिलता है तो ढूंढ के निकालेंगे। वहीं पर क्यों गए? और मुनि महाराज कभी ऐसा नहीं करते, करते वो हर घर में प्रवेश करते, और अपना कह कर के नहीं, ये श्रावकों का है, मेरा नहीं है। और हम यहां आने का कारण ये बना कि 24 घंटे में एक बार इस क्षुधा वेदनी को दूर करना पड़ता है, संयम पालन करने के लिए एक बार जाना पड़ता है, उसके बिना तो धर्म का पालन हो नहीं सकता, तपस्या नहीं हो सकती। इस उद्देश्य से एक बार श्रावक के यहाँ जा करके आहार लेने जाते, किंतु ऐसे उनके मन में ऐसे परिणाम आ सकते हैं क्या? देख लो, इनके घर में जो आहार बना है वो मेरा है, आएगा भोजन के प्रति भी ऐसा भाव नहीं आएगा, वो उनका भोजन है, वो दान में देंगे तो हम लेंगे, वो भी अंतराय कर्म का, लाभांतराय कर्म का क्षोभसम हो तो लेंगे। अगर अंतराय कर्म हमारे लिए सता रहा है, बाल आदि जीव आदि आते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि यह लाभांतराय कर्म का उदय है और हम त्याग करके आएंगे। भोजन में भी इच्छा नहीं है, कर्म के शर्त पर, क्षयोपशम के आधार पर अगर मिलता है तो स्वीकार करेंगे, अगर क्षयोपशम नहीं है तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब देखो, भोजन पर आसक्ति भाव नहीं है, उनके घर पर आसक्ति भाव नहीं है, तो ये सत्यवान है या असत्यवान? अगर श्रावक चले जाएं किसी के घर, हाँ, क्या कहना, सभी ही उठा करके ले आने के लिए भाव होते हैं, लेकिन उठा नहीं सकते, वो उनका है, उसको भी अपना बनाना, जो दूसरे का है उसको भी अपना बनाने का जो भाव होते हैं ना, ये बहुत बड़ा असत्य है। एक तो जो अपना स्वामित्व जिस पर है, जिसने जो वस्तु आपने कमाई है, आपका स्वामित्व है, आपकी वस्तु है, उसको भी अपना कहना, ये असत्य है, ये उत्तम सत्य धर्म का घात करता है, इसलिए छोड़ने को बताया है वस्तु को। आचार्य परमिष्टि के मूल गुण 36, 6 द्रव्य हैं, चेतन और अचेतन, इन दोनों द्रव्यों में ममत्व भाव जो नहीं करता है वो मुनि है। पर 6 द्रव्यों पर ममत्व हो गया तो उत्तम सत्य धर्म चला गया, क्यों? अपना कहा तभी इच्छा हुई। इच्छा कब होती है? ये मेरी वस्तु है, इतना ही आ गया तो हो गया। गया कौन सा? गया कौन सा धर्म? गया सत्य धर्म गया, तो क्या उत्तम क्षमा बचा, मार्दव बचा? हाँ, वो होता ही है, इसलिए तो उसी को दबाना है, ऊपर आता है तो और दबाना है, और ऊपर आता है तो और एक बार दबाना है, दबा दबा करके, दबा दबा करके पूरी तरह से दबा देना है। इच्छा का मरण होना आवश्यक है। इच्छा निरोधो तपः, संयम और तप इत्यादि जो धारण किया जाता है जीवन में, इच्छा के गले को दबाने के लिए ही किया जाता है। और इच्छा में बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्रोध को बहुत जल्दी हम दबा सकते हैं, मान को भी दबा सकते हैं, माया को भी दबा सकते हैं, माया को दबा सकते हैं। देखो, दबाते 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 चले जाते हैं और नवे गुण स्थान में इन तीनों को दबा देते हैं, लेकिन लोभ को नहीं दबा पाते, वो दसवें गुण स्थान में जाकर के दबाना पड़ता है उसको। सूक्ष्म संज्वलन लोभ कषाय जीवित है, उसके प्राण अभी भी हैं। लोभ पाप का बाप बखानो, लोभ ही सभी कषायों में बड़ी कषाय है। लोभ बड़ी कषाय, इस कषाय को ही दबाने का प्रयत्न प्रति समय चलना चाहिए, क्योंकि इसी लोभ के कारण से सभी कषायें संचालित हैं। आपको क्रोध आता है तो क्यों आता है? लोभ होने से ही क्रोध आता है, तो उत्तम क्षमा नहीं होती। क्रोध है तो उत्तम क्षमा नहीं। आपको मान आता है तो क्यों आता है? इच्छा होने से, पर वस्तु के प्रति, ये मेरी, मैं इनका मालिक, ये मान आया, मान कषाय। पर वस्तु के प्रति ये मेरा, मैं इनका, इस प्रकार जो मान कषाय की उत्पत्ति होती है ना, ये मान कषाय ही उत्तम मार्दव धर्म को विनाश करता है। इस गणित को बहुत अच्छी तरह से समझ करके चिंतनशील बनेंगे ना, धर्म का रास्ता सरल हो जाएगा, पालन करना सरल हो जाएगा। अगर ये विचार, ये सिद्धांत के विचार मन में समीचीन रूप से होने लग जाएं, तो आप इतने फ्री हो जाएंगे, आपके सामने जो 6 द्रव्य हैं उनमें समता भाव जागृत हो जाए। इन 6 द्रव्यों में हम इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करेंगे, कषाय बुद्धि नहीं करेंगे। ये मेरे नहीं हैं, यही कहना हमेशा, ये मेरे हैं कहा ना, तो असत्यवान हो गए। जो आपका हो नहीं सकता, आपका है नहीं, उसको अपना कह करके स्वामित्व जमाना, और जाते समय ये आता नहीं, जाता नहीं है साथ में, ये भी सत्य है ना। आ नहीं सकता फिर भी अपना कहा, ये असत्य। क्यों कहना ऐसा? मोह है तो मोह को कौन जीतेगा? हम ही तो जीतेंगे। अब इतना ही जीतना पड़ेगा कि इन वस्तुओं को अब हम ग्रहण नहीं करेंगे, यही दीक्षा है। आचार्य परमेष्ठ यही कहते हैं, ये 6 द्रव्य तुम्हारे नहीं है, ऐसा संकल्प करो, बस ये दीक्षा मानी जाती है और हो जाएगी। करोगे तो हो जाएगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। आचार्य परमेष्ठ जब किसी अपने शिष्य को दीक्षा देते हैं तो दीक्षा क्या मानी जाती है? दीक्षा का मतलब ये है क्या कि दिगंबर हो गया और पिंछी कमंडलू धारण किया, मुनि बन गए। मुनि का पहचान क्या है? तो पिंछी कमंडलू और दिगंबर वेश, ये दीक्षा है क्या? दीक्षा किसका नाम है? पिंछी कमंडलू और दिगंबर वेश को धारण करने के बाद पर वस्तु को हम अपना समझ सकते हैं क्या? नहीं, अगर संकल्प नहीं किया है तो। ये 6 द्रव्य मेरे नहीं है ऐसा संकल्प नहीं किया है और दिगंबर बन गए, इच्छा बच गई है, जीवित है। यहां पर दशधर्म प्रकट हो गए क्या? तो दशधर्म ही प्रकट नहीं हो गए तो पिंछी कमंडलू और दिगंबर वेश किस काम का? वो पूजनीय है क्या? वंदनीय है क्या? वो दिगंबर अवस्था बाह्य वेश नमोकार मंत्र में बैठेगा क्या? वो नमोकार मंत्र में रहते हैं क्या साधु परमेष्टि? नहीं रहते, नहीं रहते। पर वस्तु को देखकर एक श्रावक को भी इच्छा होती है और पर वस्तु को देखकर मुनि को भी मोह हो रहा है, तो फिर श्रावक में और मुनि में क्या अंतर है? अंतर नहीं है ना, भाव एक है क्या? नहीं, भाव एक है। तो आप के भाव जिस गुणस्थान में ले रह गुणस्थान में रह करके हो रहे हैं, उसी गुणस्थान में वो भी मुनि आपके साथ में ही है। नमोकार मंत्र में कहाँ है? छठे सप्तम गुणस्थान में कहाँ है? इसलिए रत्नकरण श्रावकाचार ग्रंथ में समंत भद्र स्वामी ने लिखा है, ग्रहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो मोहिनो मुने अनगारो ग्रही श्रेयान, अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। ग्रहस्थ मोक्ष मार्गस्थ है, अर्थात क्या? मार्ग में तो है ही नहीं, मार्ग के पगडंडी पर है, वो भी एक रास्ता ही है, वो भी एक मार्ग ही है, लेकिन वह राजमार्ग नहीं है, पगडंडी मार्ग है। सम्यक दर्शन आदि जो ये प्रकट होते हैं ना चतुर्थ गुण स्थान में, यहां से मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता, मार्ग तीन से बनता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और यहां पर चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन है और सम्यक्त्व के संबंधित 25 दोषों से रहित आचरण वाला सम्यक्त्वाचरण चारित्र है, लेकिन सैमाचरण चारित्र नहीं है। तो रत्न कितने हो गए? एक सम्यक दर्शन और एक सम्यक ज्ञान, दो ही हैं, यहां चारित्र नहीं है। मोक्ष मार्ग सैमाचरण से बनता है और जो मार्ग पर होते हैं वो वंदनीय ही होते हैं, और जो मार्ग पर अभी नहीं है वो वंदनीय नहीं होते। तो कौन कौन से गुणस्थान वाले वंदनीय नहीं होते? चौथे और पंचम गुणस्थान वाले वंदनीय नहीं होते, क्योंकि वो अभी मार्ग पर आए नहीं, मार्ग पर आने का प्रयास चल रहा है, उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवार बन करके आ रहे हैं, चलना भी प्रारंभ हो गया है, घर छोड़ चुके हैं, मार्ग में हैं, पर अभी राजमार्ग पर आए नहीं है। राजमार्ग पर आने के बाद मोक्ष मार्ग शुरू होगा, जहां पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों रहते हैं। तो देखो, यहां पर हम ये बता रहे हैं, उत्तम मार्दव धर्म क्या है कि आपको बहुत मृदु होना पड़ेगा, नवनीत के समान मृदु हो करके इस धर्म को धारण करना पड़ेगा। कैसे मृदु बन जाए? तो ऐसे मृदु बन जाओ, ये मेरा है, ये जो परिणाम आ रहा है पर वस्तु को लेकर के आ रहा है। मद पर वस्तु से होगा या अपनी वस्तु से होगा? पर वस्तु से, अपने वस्तु से कभी अपने को मद हुआ ही नहीं, हुआ? यह सम्यक दर्शन मेरा है, इसको छीनने वाले तुम कौन हो? ऐसा अहंकार हुआ? हाँ? हो जाए तो बहुत अच्छा है, जहां होना चाहिए वहां तो होता नहीं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां पर मद होता है, और मद करते करते बहुत वह अच्छा लग रहा है, वो इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे मद खाने पर मद 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 खाने पर अच्छा लगता, मीठा लगता है ना, ये पर पदार्थ हमारे लिए मीठे लग रहे हैं, इसलिए इन मीठे पदार्थों को कोई कहता है छीनने के लिए आता है तो क्रोध आता है, और ज्यादा इकट्ठा होता है तो मान आता है, और कुछ भी नहीं मिलता है तो मायाचारी होती है, उनको इकट्ठा करने के लिए कहीं से भी इकट्ठा करके चोरी करके ला देता है मायाचारी से, और फिर लोभ होता है। ये लोभ होता है इसलिए ये तीन कषायें होती है, पर वस्तु के प्रति लोभ रहता है इसलिए क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी होती है, तो तो वस्तु को निमित्त बना करके तो हो रहा है ना। इसलिए वस्तु मात्र से अपने परिणामों को वापस लेना, मूर्छा भाव वहां से हटाना, ये उत्तम क्षमा और मार्दव है। मार्दव त्याग करने के लिए नम्रता आनी चाहिए कि नहीं, त्याग के प्रति, त्याग धर्म के प्रति, वस्तु के त्याग के लिए नम्रता तो आना चाहिए। नम्रता आए बिना उत्तम मार्दव धर्म आएगा नहीं। किसी ने कहा ये सब कर्म बंद के कारण हैं, इतना अहंकार मत करो, ये सब त्याग दो। तुम कौन कहने वाले? ये आता है, ये क्यों आया? वस्तु के कारण। संग्रहित वस्तु हमारे लिए मान कषाय की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, इसलिए वस्तु को हटाने को बताया। जैन धर्म निर्ग्रंथ धर्म है। जैन धर्म कैसा धर्म है? निर्ग्रंथ धर्म। वस्तु को रख करके धर्म करो ये नहीं सिखाता। वस्तु को छोड़ना तो धर्म है, अब उस धर्म को पाना चाहते हो तो फिर अभ्यास करो, छोड़ने का अभ्यास करो, अपने स्वामित्व बुद्धि को उससे हटाने का निरंतर पुरुषार्थ करो। ये पुरुषार्थ निरंतर चले तो एक दिन आप उसी पुरुषार्थ के माध्यम से पहले भाव कर्म को जीतेंगे, और भाव कर्म यदि जीते गए तो फिर द्रव्य कर्म का उदय भी नहीं होगा। देखो अनंतानुबंधी भाव को जीत गए तो उदय में रहेगा क्या? वो भाव कर्म को जीतने पर वो उदय में नहीं रह सकता, वो दब गया, उपशमित हो गया। अप्रत्याख्यानावरणी भाव को जीतने पर वो द्रव्य कर्म उदय में रहेगा क्या? नहीं रहेगा, वो भी दब जाएगा। प्रत्याख्यानावरणी कर्म के उदय में होने वाले भाव कर्म उनको जीतने पर उसका उदय रहेगा क्या? वो भी दब जाएगा। तो हमको जीतना किसको है, द्रव्य कर्म को या भाव कर्म को? भाव कर्म को जीतने पर द्रव्य कर्म अपने आप जीता जाता है, इसलिए भाव को जीतना चाहिए। हम किस पर पुरुषार्थ करें? इच्छाओं पर पुरुषार्थ करें। इच्छा निरोधो तपः। और जब तक पर वस्तु के प्रति रहने वाले राग द्वेष आदि नहीं जाएंगे, जब तक रहते हैं तो होंगे ही वो, इसलिए उनका त्याग बता दिया। ये त्याग करना ही वस्तुतः उत्तम मार्दव धर्म है। त्याग तब तक नहीं होता जब तक कि उसके प्रति ये मेरा 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 मैं रहता है ना, तब तक त्याग भी नहीं हो सकता उसका। इसलिए दूसरा धर्म ये उत्तम मार्दव धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता। कैसे करेंगे? धीरे धीरे चलेंगे, घबराना नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षितः। हम बढ़ते बढ़ते एक एक कदम, पहले हम सम्यक दृष्टि बने, फिर अनुवृत्ति बने, फिर महावृत्ति बने। बनने के लिए पहले भाव कर्म को ही जीतना पड़ता है। अनंत अनुबंधी कर्म का उदय भी, द्रव्य कर्म का उदय भी आपको ये नहीं कह रहा है कि हे आत्मा तुम सम्यक दर्शन धारण मत करो। कहता है क्यों? वो तो पुद्गल है, वो क्या कह सकता है? पुद्गल कर्म उदय में आकर के कभी भी आपको सम्यक दर्शन से रोक नहीं सकता। हम ही अपने परिणामों के कारण सम्यक दृष्टि नहीं बन रहे हैं। हमारे अनादिकालीन संस्कार, भाव कर्म के संस्कार ऐसे हैं कि हम उन भाव कर्मों के कारण से जो परिणाम हम करना नहीं चाहिए हमें, वो परिणाम होते हैं, और उससे सम्यक दर्शन का घात हो रहा है, उस गुण का विघात हो रहा है। हाँ 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 रहता नहीं है तो स्वामित्व हटाना पड़ेगा। आप अपना स्वामित्व रख करके देते हैं तो दोनों शामिल हैं, और दोनों का है परिग्रह। दोनों का है, और आप संकल्प करके ये परिग्रह वस्तु मेरी नहीं है, अब इसका रहना जाना, इसका जो कुछ भी है, इसकी रक्षा ये मैं पुत्र को ही सौंप देता हूँ, उधर मुड़ करके नहीं देखूंगा उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा इन भावों से आपने सौंपा है तो ममत्व तो हट गया है, आप ऊपर के गुणस्थान में आ जाएंगे। और पुत्र के लिए दिया है और उसमें उनके द्वारा पूछने पर कृतकार्यत अनुमोदना होने लग जाए, वो पूछेगा ना इसको क्या करूं कहां लगाऊं, तो उस समय आप लगाम लगाएंगे, इधर क्यों लगाया उधर क्यों लगाया, हमने इसलिए दिया था क्या। ये बातें नहीं होती, बाद में देने पर ये बातें नहीं होना चाहिए, तो गुणस्थान ऊपर का है, अगर उसके प्रति कृतकारिता अनुमोदना इत्यादि होने लग जाए, विकल्प होने जाएंगे, उसको लेकर के अशांति होने लग जाए, तो फिर वो गुणस्थान नहीं है, फिर देना भी बराबर नहीं देना भी बराबर। ये छोटा सा प्रश्न का उत्तर मोटा है। हाँ एक मिनट, हाँ दश धर्म में मूल गुणों में, हाँ वहीं से शुरू हुआ था, हाँ आचार्य परमेष्टि को मूल गुण में इसलिए रखा कि वो सबको संभालने वाले हैं, और सबको संभालने वाले के पास क्षमा भाव बहुत 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 ऊंचा होना चाहिए, इसलिए कंपल्सरी है। और साधु के पास जरा गड़बड़ हो जाए तो चलेगा, लेकिन आचार्य परमेष्टि तो बहुत सहनशील होते हैं, सहनशील रहना चाहिए, इसलिए इनको मूल गुण के रूप में रखा है। आचार्य परमेष्टि किसी भी बात को शिष्य के लिए समझाते हैं तो कितने मृदुता से, यानी खुद में क्रोध तो रहता ही नहीं, गुस्सा नहीं आ सकता, कैसे समझाते हैं, क्षमा भाव से समझाते हैं, क्षमा भाव से, क्षमा भाव से क्यों समझा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, ये शक्ति कहां से आ गई, वो शिष्य को भी अपना समझते हुए भी ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते, जैसे आप अपने बच्चों से ज्यादा अपना समझते हुए भी उसके प्रति ज्यादा मतलब सलगी कुड़ला सवलत सवलत बोलते, ज्यादा सवलत नहीं देते आप, इन्हें ज्यादा अटैचमेंट नहीं, जितना उतना उतना रहते हैं ना, वैसे आचार्य परमेष्टि को कंपलसरी। आप सभी घर के आचार्य परमेष्टि हैं, बच्चे सभी शिष्य हैं, आपको कैसे वो क्वेश्चन उत्पन्न हो गया, ये आप अपने बच्चों को जैसा रखते हैं ना, क्रोध के बिना, क्या क्रोध आता है बच्चों पर, कभी भी क्रोध नहीं आता, छोटा बच्चा है क्रोध नहीं आता, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही करने लग जाए तो आता है, लेकिन इतना जोर से भी नहीं आता, क्रोध आने पर क्या फेंक देते हैं उसको, अपना समझते हुए भी उसको जो व्यवस्था करनी चाहिए करते हैं कि नहीं, वैसे ही आचार्य परमेष्टि समता के साथ सहनशीलता के साथ करते हैं, सब कुछ व्यवहार निभाते हैं, इसलिए इन दश धर्मों को स्वयं भी पालन करते हैं और मुनियों को भी पालन कराने के लिए उपदेश देते हैं, और दश धर्म आचार्य परमेष्टि के पास विशेष रूप से रहते हैं, उत्कृष्ट रहते हैं, साधु परमेष्टि के लिए जगह नहीं चलेगा, साधु परमेष्टि को ये आ सकता है क्या, आचार्य परमेष्टि कुछ कहें तो वो उल्टा भी समझ सकते हैं, लेकिन आचार्य परमेष्टि कभी भी शिष्य के प्रति कठोरता से व्यवहार नहीं करेंगे, संदर्भ को देख करके कठोरता कठोर शब्दों का उपयोग हो सकता है, लेकिन भीतर में मृदुता को धारण करते हुए ही कठोर शब्द, मुंह से तो कठोर शब्द निकलते हैं लेकिन भीतर मृदुता होती है। ये आचार्य परमिष्ठ की विशेषता होनी चाहिए, इसलिए दशधर्मों को मूल में रखा है। साधु परमिष्ठ को मूल कहने की जरूरत नहीं, लेकिन धर्षधर्म रहते हैं क्या? नहीं, उनके रहते हैं, तीनों परमिष्ठी के रहते हैं, उपाध्याय परमिष्ठी, आचार्य परमिष्ठी और साधु परमिष्ठी। समय बहुत हो गया जिनवानी। प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निश्रित जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिन वाणी। जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो मां अब तक हम विषयांध रहे, अब ना हम विषयांध रहे।